आनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मां सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। तत्पश्चात मैं श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता हूं और इनके रचयिता व्यास जी को, और सबसे पहले जिन्होंने भागवत का प्रवचन किया था उन श्री सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं वृंदावन में रहता हूं, पहले से ये लोगों ने बतलाया विष्णु जी ने। वृंदावन छोड़ने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन तो लोगों के आग्रह से मैं यहां आया। आज मैं यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को चार दिन के लिए सुनाऊंगा। वैसे श्रीमद् भागवत की कथा सात दिन में भी लोग सुनाते हैं, किंतु उससे अच्छा ये होता है कि एक महीने की हो, और उससे अच्छी रहे यदि उसके अर्थ को प्रकाश करके अच्छी तरह से समझा करके जीवन भर भागवत पढ़ता रहे और अपना जीवन वैसे ही बना दे। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सार्वकालिक अर्थात समस्त समयों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका सामंजस्य श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। आज से लाखों करोड़ वर्ष पहले जो समस्या थी, बीच में हुई, भविष्य में होगी, अभी है, उन समस्याओं का कि मीमांसा कैसे होगी, कैसे उसको सरल किया जाए, सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया। ये कभी भी पुरानी नहीं होती, नित्य नवीन है। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नैमिषारण्य नाम का जगह है, बहुत ही पवित्र है, गोमती नदी के किनारे है। वहां पर 60,000 ऋषि महर्षि लोग एकत्रित हुए। कलयुग आने वाला था, करीब करीब आ चुका था, कृष्ण इस जगत को छोड़ चुके थे। उस समय ऋषि लोग चिंतित थे, कलयुग आ रहा है, महा भयानक युग है। कली माने होता है कलहंग लाती, बिना किसी कारण के लोग झगड़ेंगे, बिना किसी बात परस्पर झगड़ेंगे। इसलिए वो चिंतित थे कि क्या किया जाए। इतने में सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य वहां थे, उनसे कहा हमारा कल्याण कैसे हो, क्या हमको करना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और जैसे उसमें कहा गया अपने जीवन को उसमें प्रतिष्ठित करो, उसके विचारों को उपदेशों को पालन करो, कलयुग तुमको नहीं सताएगा। यह कह करके उन्होंने भागवत की कथा आरंभ की कलयुग के दोषों से बचने के लिए। आजकल समस्या क्या है, पहले और समस्याएं थी किंतु वर्तमान में समस्या क्या है, विज्ञान इतना उन्नत है कि नई खोपड़ी भी लगा सकता है। इतना इन्होंने उन्नति की कि हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक बहुत थोड़े समय में पहुंच सकते हैं। रसोई घर से लेकर के एटम बम तक तरह तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, सब कुछ किया, पृथ्वी मानो एक मुट्ठी में आ गई। अभी भारत पर चलना है, अभी बैठिए सवेरे उतर जाएंगे। कहीं क्रिकेट का खेल हो रहा है, कहीं फुटबॉल हो रहा है, घर में बैठ करके देखिए सब किया, किंतु समस्या पैदा कर दी और उसका समाधान वो नहीं कर सका। पति और स्त्री में प्रेम कैसे बने, उनका हृदय दूर कर दिया, प्रेम नहीं रहा। बाप और बेटे में प्रेम नहीं रहा, आज उसके लिए ओल्ड हाउसेस बनने लग गए हैं, विशेष करके ये गांधी आश्रम बना है, बूढ़े लोग जिनको घर वाले नहीं पालन पोषण करेंगे, नहीं बातचीत करेंगे, वो लोग यहां रहे। क्यों, कुत्ते को पाल सकते हो और अपने माता पिता का पालन नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी समस्याएं ही हैं जगत में। आज स्त्री का बैंक बैलेंस अलग, पति का अलग, बेटे का अलग, बेटी का अलग, जमाई का अलग, क्यों, किसी पर किसी का विश्वास नहीं है। इस तरह से आत्मा की जो भूख थी, प्यास थी, आत्मा के जो गुण थे वो सब खत्म होते चले गए। आदमी आजकल एक मशीन सा बन गया है, उसके हृदय में शांति नहीं है, सुख नहीं है। कलकत्ते में, बंबई में हम जब जाते हैं तो देखते हैं यहां भी वैसा ही होगा। सड़क पर लाखों आदमी की भीड़ होती है, यहां तो मैं नहीं देखता, किंतु कलकत्ते और बंबई में हम देखते हैं इतनी भीड़, लोगों परस्पर टकराते चलते हैं, किंतु एक आदमी गिर जाए तो उठाने वाला कोई नहीं, परस्पर प्रीति नहीं गई। आदमी बहुत उन्नत हो गए हैं किंतु प्रेम कहां है, ये चूंकि यही समस्या है कि परस्पर प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो ये विश्व बैकुंठ यही बन जाता, किंतु दुख की बात परस्पर किसी में प्रेम नहीं है। पुरुषों पर मनुष्यों में परस्पर प्रीति नहीं है, कुत्ते इसलिए पालते हैं जब कुत्ता धोखा नहीं देगा, अंततः जब बुलाएंगे तो वो पूंछ ऐसा करता हुआ आ जाएगा, किंतु पुरुषों पर कोई विश्वास नहीं, स्त्री पर विश्वास नहीं, कहीं हमको छोड़कर के दूसरी जगह न चली जाए, और स्त्री को विश्वास नहीं हमको छोड़कर के दूसरी जगह न चले जाए। जब कहीं सहारा नहीं होता तो आप सुसाइड कर लेते हैं, उनको भगवान भी नहीं है, भगवान पर भी विश्वास नहीं है। यही युग की समस्या है, तो भागवत क्या करेगा इसमें? करेगा, जरा सुनो ना अच्छी तरह से, अच्छी तरह से ये चीज समझ सकेंगे जो विज्ञान नहीं दे सका। आज तक भी विज्ञान मैं कौन हूं इसका उत्तर नहीं दे सका। प्राण कहां चला जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है, सड़ गल जाता है, इसका उत्तर विज्ञान के पास में नहीं है आज तक। यदि कभी विकसित होगा तो ये देगा। भागवत में ये सब सारी समस्याओं का हल निदान बतलाया गया है। हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे दूसरों से प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम पूर्वक व्यवहार से ही जगत में हम सुखी रह सकते हैं। खाना तो गधे सूखा कुकर भी खाते हैं, किंतु यदि प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ फीका है। कहां जाना है हमको? इस आत्मा शरीर से निकल जाने पर कहां चली जाती है? इसलिए सुत गोस्वामी जी बतला रहे हैं, गुरु को प्रणाम किया और कहने लग गए। देखो एक समय नारद ऋषि, कैसे ऋषि? सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने कि भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जाने जा सकते हैं। प्लैनेट में जाने के लिए, दूसरे प्लैनेटों में जाने के लिए उनको विमान की जरूरत नहीं होती, बस स्मरण किया पहुंच गए, एक सेकंड नहीं लगा। और सबके अंदर की बातें जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं। एक दिन घूम रहे थे, घूमते घूमते हरिद्वार में आए। हरिद्वार का नाम सुना होगा, गंगा के किनारे, हिमालय के, हिमालय का वो द्वार है इसलिए उसको हरिद्वार कहते हैं। वहां पर उन्होंने उनसे भेंट हुई अपने बड़े भैया से। उनके बड़े भैया कौन है? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। 5 वर्ष के सब समय है, नंगे रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, हवा की भी जरूरत उनको नहीं, और घूमते रहते हैं। अथाह ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार उनमें है। ऐसा कोई चीज नहीं जिसका ज्ञान नहीं। किसी को देख ले तो आदमी जी जाए, जिसको जो कुछ कह देंगे वही हो जाए। तो उनसे मिले तो उन्होंने पूछा, अरे नारद तू यहां पर कैसे आया? तुम्हारा मुख कुछ सूखा हुआ है, तुम कुछ चिंतित दिख रहा है, तुमको चिंता कैसे हुई, तुमको दुख क्यों है? नन्हे बड़ी लंबी कहानी है, मैं बड़ा दुखी हूं। क्यों? अरे तुम तो भक्तिमान है, बहुत ज्ञानी है, क्या करूं? मैं विश्व में पर्यटन कर रहा था, कृष्ण के इस जगत से अंतर ध्यान होने पर, उनकी लीलाएं समाप्त हो जाने पर, जो द्वारका की भी लीला समाप्त हो गई, तो मैं घूम रहा था। अद्भुत अद्भुत दृश्य मैंने देखे। क्या देखा? देखा अब साधुओं में वो सार नहीं रह गया जो पहले साधुओं में होता था। आजकल भागवत कहते हैं रुपए पैसे के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं करते। कीर्तन करते हैं तो पैसा बटोरने के लिए, अपने बड़े बड़े महल बनाने के लिए, लोगों के हृदय में मंदिर बनाने के लिए नहीं। पुरुष बड़े लोभी और लालची हो गए हैं, पुरुष लोग स्त्रियों को अपना दासी बना करके रखना चाहे, जब इच्छा किया तो किसी स्त्री को रखा फिर घर से निकाल दिया, रुपया ही उनका सर्वस्व हो गया। और स्त्रियां कैसे? स्त्रियों को पतियों में उतना प्रेम नहीं है, एकदम जगत से ये सब गुण नहीं दूर हो गए, किंतु है कुछ कुछ है। उनका केश प्रसाधन करना ही अपना श्रृंगार है, और कुछ रह नहीं गया, ब्रह्मचर्य इत्यादि नहीं रह गया। इसी तरह से लोग डकैती, राजा राष्ट्रपति बन करके और प्रधानमंत्री बन करके डकैती करते हैं, प्रजाओं का शोषण करते हैं। अब कथाओं में भी सार नहीं रह गया। इस तरह से मैं चारों तरफ में गया, बहुत दुखी हो गया। होते होते मैं वृंदावन में आया। जब वृंदावन में आया एक अजीब चीज वहां देखी। मेरी हिंदी समझ में आ रही है? वृंदावन में आया, अजीब बात देखी। देखी क्या? एक स्त्री है, वो किशोरी है, 15-20-16 वर्ष की है, और उसके दो बेटे हैं, वो बड़े बूढ़े हो गए हैं, केश पक गए हैं, और वो पड़े हुए हैं अचेतन, और ये किशोरी लड़की रो रही है। जब मैं वहां पर पहुंचा, पहुंच करके वो बड़ी खुश हो गई हमको देखकर। अरे आप कौन हैं? नारद जी हैं? मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, वो दुखी है? मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं, मेरा जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, तमिल तेलुगु जहां पर लोग बोलते हैं, उधर में मेरा जन्म हुआ, कन्याकुमारी इत्यादि, त्रिवेंद्रम इत्यादि, उधर में हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में मैं कर्नाटक में गई। कर्नाटक में वहां जाने से मैं कुछ बड़ी हुई, और उसके बाद में आगे बढ़ी तो बंबई प्रदेश, जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, और उसके ऊपर में गुजरात कहते हैं, वहां गई तो मैं धीरे 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 बूढ़ी हो गई। मेरे केश भी सफेद हो गए, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए, तीनों बूढ़ी हो गई। ये क्यों हो गया? घूमते 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 अब बच्चे मेरे बोले नहीं, सो गए और उठते नहीं। किसी तरह से उनको लेकर के मैं वृंदावन में आई। जहां वृंदावन में आई मैं तो किशोरी बन गई लड़की, और हमारे ये दोनों बेटे अभी भी बूढ़े हैं और सो रहे हैं। अब उठाती हूँ, उठते नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं ऐसा क्यों हुआ। नारद जी ने कहा, अच्छी बात, मैं कुछ उपाय करूंगा जो तुम्हारे बेटे भी जग जाएं और ठीक हो जाएं। भक्ति ने कहा, जी आप जाइए मत, आपके रहने से मुझे बड़ा आनंद और सुख मिला है, न जाने क्यों सुख मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। नारद जी ने कहा, तुम्हारे बेटे को अभी स्वस्थ करता हूं। ये कहकर के उन्होंने चिंता की, इनके लिए क्या करना चाहिए। गंगा जी ले गए उनको प्रयाग में, हरिद्वार में ले गए, सब जगह ले गए उनको, वहां पर स्नान कराया, बहुत दान दिया, दक्षिणा दिया, सब कुछ किया, यहां तक कि दक्षिण भारत भी ले गए, समुद्र में भी, कन्याकुमारी में स्नान कराया, गोदावरी में भी, कुछ नहीं हुआ, गया में ले गए, कुछ भी नहीं हुआ। भाई क्या करना चाहिए? ध्यानस्थ होकर के बैठ गए, अपने प्रभु का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, तुम प्रयत्न करो, चेष्टा करो, हो जाएगा ठीक, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर से जवान हो जाएंगे। मैं सोचा जी हो तो जाएगा ठीक, किंतु क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच करके ये जरूर मैं सफल होऊंगा, इसलिए घूमता घूमता यहाँ हरिद्वार में आया और आप लोगों को देखा, और मुझे उम्मीद हो गई कि आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ करके बतलाएंगे जो हमारे बच्चे पुनः जवान हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम तो भक्त हो, तुम तो सभी कुछ जानते हो, तुम तो जानते हो इस बात को जो कैसे वो अच्छे हो जाएंगे, किंतु तुम हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। देखो एक बात करो, श्रीमद्भागवत का 7 दिनों तक श्रवण करो, सुनो श्रीमद्भागवत। तो ये 7 दिन का भागवत सुनने से तुम्हारे लड़के फिर पुनः वैसे हो जाएंगे, बच्चे जैसे जरूर हो जाएंगे, और तुम जो कुछ चाहते वो पूरा हो जाएगा। भागवत में एक ऐसी शक्ति है, भगवान के नाम में एक ऐसी शक्ति है, बड़े बड़े दुष्ट लोग भी बदल जाते हैं, ऐसी श्रीमद भागवत में उनके शब्दों में ऐसा शक्ति है। श्रीमद भागवत का कथा उन्होंने आरंभ किया और 7 दिन तक सुना। भक्ति देवी और भी ठीक रूप में हो गई और उनके दोनों लड़के जग गए और वो नौजवान होकर के हंसने और बोलने लग गए। उन्होंने कहना आरंभ किया, देखो एक और बड़ी विचित्र बात बतलाता हूं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण गरीब रहता था, उसको लड़का नहीं था। उसने शंकर जी की आराधना की और उसको एक बेटा हुआ। आराधना की, शंकर जी ने कहा देखो ये चीज देता हूं इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना, खिला देना, बहुत ही सुंदर स्वच्छ और बुद्धिमान लड़का होगा, माता पिता का आदर करेगा और भगवान की भक्ति भी करेगा। जब घर पर लेकर के गए तो अपनी पत्नी को वो दिया, ये देखो तुम इसे खा लो, तुमको बहुत ही सुंदर अच्छा पुत्र होगा। हम लोग की उम्र 50 से अधिक हो गई है, अब बूढ़े होने जा रहे हैं, अभी समय में एक बच्चा तो हो जाए जो मरने के बाद में हमें पिंड देगा और हमारा वंश को चलाएगा, नहीं तो जिसके घर में लड़का रोता नहीं वो तो श्मशान के समान है। पत्नी ने सोचा यदि मैंने खा लिया, मुझको पेट में बच्चा आ गया तो मेरा पेट बहुत भारी हो जाएगा, मैं चल फिर नहीं सकूंगी, ये तो बड़ी भारी आफत आ जाएगी और मुझे खाने पीने में भी चलने फिरने में कष्ट होगा। मुझसे ये नहीं होगा ये 9 महीने 10 महीने तक लेकर के मैं चलती फिरती रहूं, मेरे द्वारा ये संभव पर नहीं है। उसने लेकर के एक गाय को खिला दिया और अपनी बहन को कुछ रुपया दिया, बहन को बच्चा होने वाला था, कहा जी बहन जी तुम्हारा बच्चा होगा तो हमको दे देना, मैं वो नहीं खाती। अब वो उसकी बहन को कहा जब तुमको लड़का हो तो हमारे यहां दे देना, अजय ठीक है, और उसको पैसे काफी दे दिए बल्कि अपने घर में रख लिया। एक ही दिन गाय को भी बच्चा पैदा हुआ, इसको भी बच्चा पैदा हुआ। गाय का जो बच्चा पैदा हुआ वो ऋषि का दिया हुआ, शंकर जी का दिया हुआ, और उसके घर उसके हृदय में एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ, बहुत सुंदर, सुकांत अलबेला, किंतु कान जैसे गाय के जैसे होते हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और उसका जो बच्चा हुआ उसके बहन का, महाधुंधकारी, धुंध मचाने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, बहुत ही बदमाश, बचपन से ही वो लोगों को मारता काटता, शराब पीता, झूठ बोलता, चोरी करता, डकैती करता। उसने अपने पिता को मारा, जिस तुम पैसा तो हम जुआ खेलेंगे और शराब पिएंगे। पिताजी उसके डर के मारे जंगल छोड़कर जंगल में चले गए और एक कुएं में गिर करके मर गए। अब गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए तीर्थों में पर्यटन करने के लिए। थोड़ी देर के बाद में उसने मैया को मारा पीटा, मारने पीटे से मैया भी घर से निकल गई और कहीं मर गई। इतना दुष्ट था, धुंधकारी माने होता है धुंध मचाने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, बिना बात का किसी से। कुछ दिनों के बाद में घर का सारा पैसा खत्म कर दिया और कुछ वेश्याओं को बुला ले आया, घर में ही शराब पीता, डकैती करता, चोरी करता, लूट मार करता, घर में पैसे अपने ही। एक दिन बहुत सा रुपया पैसा और सोने के हार और कंगन उसको चोरी में मिले, डकैती में, घर में ले आया। वेश्याओं ने देखा जैसे ये तो दे तो रहा है किंतु ये फिर कल ले लेगा, इसलिए सब भेषाओं ने मिल करके उसे पकड़ लिया और जलती हुई लकड़ी से उसे मारा और उसे एकदम मार करके खत्म कर दिया और वहीं पर गड्ढा गाड़ करके उसको खोद करके गाड़ दिया और अपने आप रुपये पैसे सब लेकर के चली गई। अभी मरने के बाद बहुत भयंकर भूत पिशाच हुआ, कहता जी मुझको कोई मार रहा है, मर रहा जल रहा जल रहा, और जो कोई आए उसको धमकाने गाली देने पत्थर फेंकने किसी को आने नहीं देता। भूत सच है ये झूठ नहीं है, किंतु भक्तिमान लोगों के पास में, पवित्र लोगों के पास में नहीं आते हैं। जूनिया हैं, जन्म लेकर के फिर मर करके फिर जन्म लेना पड़ता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्यता, जो मरेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा और जो जन्म लेना है उसको भी मरना होगा, उसको भी बूढ़ा होना होगा। ये थ्योरी है गीता की, समस्त शास्त्रों की ऐसी थ्योरी है। अब वो मर करके भूत हुआ, बहुत उत्पात करने लगा और इतने में गोकर्ण जी घूमते 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 सब तीर्थों से होते हुए घर में पधारे। लोगों ने कहा, मतलब ने कहा जी अपने घर में मत जाना, नहीं तो वहां पर भूत है पिशाच है तुमको मारेगा काटेगा। नहीं कोई बात नहीं है, बस भगवान का नाम करते हुए और घर में गए। अब वो तरह तरह के वेश बदल करके उनको डराता धमकाता पत्थर मारने की चेष्टा करता, किंतु वह भगवान का नाम करते रहे। अंत में नहीं तू कौन है तू बतला, कौन है तू, पानी लिया छोड़ करके उस पर मंत्र छोड़ करके छोड़ दिया, मैं तेरा भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझको बेशाओं ने ऐसे मार करके यहां पर गाड़ दिया, मैं भूत हो गया, तुम हमारी जल्दी से रक्षा करो, बहुत प्यास लगती है भूख लगती है कष्ट होता है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी अरे मैंने तो तुमको गया में पिंड दिया तुमको मिला नहीं, तो नहीं तो हरिद्वार में पिंड दिया नहीं मिला, नहीं मिला, सब कुछ किया, तुम हमारी रक्षा करो जैसे तैसे। अजय ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए मैं बात करता हूं। सोचते 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 सूर्य देव की उन्होंने उपासना की, सूर्य ने बताया जी भागवत का पाठ कर और इसको सुनाओ, आमाहन करके बुलाओ इसकी प्रेत आत्मा को। बस लौट करके आए, सप्ताह रखा और एक कच्चा बांस कच्चा उसको मंत्र से प्रौढ़ करके रख दिया और उसे भागवत सुनाने, और भी बहुत से लोग जुट गए, हजारों लोगों की संख्या में आए और वो उसी प्रेतात्मा को अपने भाई के लिए सुनाने लग गए। कौन सा भागवत, जिसको परीक्षित महाराज जी की सभा में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, बहुत शक्तिशाली है। 7 दिन सुनाने के बाद में एक एक दिन सुनाते चले चलते जा रहे थे और पहला दिन समाप्त हुआ, एक बांस का वो गांठ खुल गई और शब्द हुआ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन चार, ऐसे करते 7वें दिन 7ों गांठें फट गई और श्रीमद भागवत समाप्त हुआ। लोगों ने देखा जी सोने का एक दिव्य सिंहासन आया, बैकुंठ से भगवान के दूत लेकर के आए और उसको बैठा करके लेकर के चले गए। गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, भाई कथा तो मैंने कही और इन लोगों ने सुना और केवल धुंधकार ही गया, उसके पाप दूर हो गया और हो गया और बाकी सब बैठे रहे। उन्होंने कहा जैसे कहना चाहिए था उस विश्वास के साथ में और जैसा सुनना चाहिए विश्वास के साथ में, तुमने नहीं कहा और न उन लोगों ने सुना, अच्छी तरह से समझ बूझ करके उसको समझने की चेष्टा करो और वैसे ही बनाने की चेष्टा करो, जरूर होगा। उन्होंने फिर कथा कही और सब श्रोता लोग आए, इस बार सभी का ये शरीर छूट गया और चतुर्भुज होकर के बैकुंठ धाम में चले गए। इस तरह से भागवत की कथा है, इसको केवल इस रूप में समझा जाए कि ये सब मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी नहीं। आपने सुना होगा सीता जी का जब अपहरण होने जा रहा था, सोने का मृग बना मारीच और सीता जी के सामने से वो टहलने लगा। सीता जी ने कहा प्राणनाथ मुझ इस मृग को चाहिए, सोने का हिरण चाहिए, मैं इसे लेकर के जब अयोध्या में जाऊंगा जाऊंगी तो महारानी अपनी माता जी कैकई को मैं ये उपहार में दूंगी, और नहीं तो यदि जीवित पकड़ लिया गया तो उसको उपहार देंगे, और यदि मार करके लाए तो इसका जो चमड़ा होगा ये भरत के लिए देंगे, इसका जरूर हमको चाहिए। रावण रावण के परामर्श से वो हिरण बन करके आया था सीता जी को चोरी करने के लिए। जब वो मारा गया मरते समय उसने हाँ लक्ष्मण कहा 3 बार। उस समय में सीता जी ने कहा जी लक्ष्मण तुम अभी जाओ राम की सहायता के लिए, राम पर कोई विपत्ति पड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा जी नहीं, उन पर कोई विपत्ति नहीं हो सकती, मैं जानता हूं, और तो तुमको भरत ने भेजा है इसलिए खौफिया के रूप में CID के रूप में, ये रामचंद्र जी मारे जाएंगे और तुम मुझको लेकर के शादी करेगा मुझसे, ये कभी हमारे प्राण चले जाएंगे तब से भी तुम्हारे साथ में घर नहीं करूंगी, ये समझ रखो तुम दुष्ट है, ऐसे ऐसे सब उनको गालियां देने लगी। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा जी देखो मैया तुमको तो मैं मैया समझता हूं, मैं अपने धनुष से एक गोलाकार चिन्ह खींच देता हूं, इसके बारे में मत जाना, जो कुछ हो सावधानी से सिकंदर में रहना। रावण इतने में आया, भिक्षांग देही जोर से करने लगा, सीताजी कुछ लेकर के और उनको देने के लिए आई। राम ने कहा जी इस लाइन से इधर में आकर के दीजिए, मैं भीतर का नहीं लेता, क्यों उसके पहले वो देख चुका था, जब ही लाइन को पार करना चाहा तो उसमें से बिजली निकलने लगी, इसलिए बार बार चेष्टा करने पर भी नहीं जा सका, उसमें कौन सा क्या किया था जिससे कि रावण उसको पार नहीं कर सका, इतना बलवान इतना साइंटिस्ट वैज्ञानिक था तभी नहीं पार कर सका, इसमें कुछ है, क्या वजह है कि वाल्मीकि जी पहले जीवन के प्रारंभ में डकैत थे, लाखों लोगों की हत्या की थी, किंतु नारद जी के संग में राम नाम जब नहीं आया तो मरा मरा कहा ऐसे उल्टा कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उस नाम में क्या था जो उल्टा नाम भी उन्होंने जप किया और ब्रह्म के समान बन गए, जिसको जो कहा वही हो गया और सर्वज्ञ बन गए, भूत भविष्यत वर्तमान सबको जानने वाले हो गए, और राम के पहले ही राम का सारा चरित्र लिख दिया, ये होना है, कैसे इस नाम का ही ये प्रभाव, वो नाम का प्रभाव था। लक्ष्मण जी ने राम का करके वो लाइन खींच दी, यहां पर वाल्मीकि ने भी मरा कर करके भी नारद जी का दिया मंत्र जप किया, राम 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 मरा करते हुए राम राम हो गया। अगस्त का नाम सुना होगा, एक चिड़िया अंडा दिया समुद्र के किनारे और वहां पर समुद्र से बहा ले गया उसकी लहरों ने, वो चिड़िया छोटी सी थी रोने लग गई, समुद्र उसकी बात नहीं सुना, हमारी अंडा दे दो, नहीं दिया, गई वो अगस्त ऋषि पासी में उनका आश्रम था, उन्होंने उससे कहा, अगस्त जी ने कहा समुद्र इसका अंडा दे दो, नहीं सुना, उन्होंने पानी उठाया थोड़ा सा और मंत्र बोला राम और बस सब पी गए, कैसे संभव है, अभी तक विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा, आत्मा तो को भी नहीं जान सकता इसके अंदर में से क्या निकल जाने पर सही रह जाता है, प्रेम कैसे होता है इसको नहीं बतला सकता, खुद ही नहीं जानता वैज्ञानिक, जब मैं कब मर जाऊंगा कैसे सुख और शांति होगी, बुढ़ापा कैसे रोक देंगे, वो खुद नहीं वैज्ञानिक नहीं बतला सकता, लाख जगत के समस्त मिलकर के भी नहीं कर सकते, ये परतत्व का विज्ञान है, इसलिए नाम में इतनी शक्ति है, मंत्र में इतनी शक्ति है, भागवत में इतनी शक्ति है, मुझे पूरा विश्वास है 50-60 वर्षों की, अब तो 76-77 अब 80 के करीब होने जा रहा, नाम की कितनी महिमा है मैं अनुभव करता हूं। विश्वास न हो आप लोग 10 दिन तक थोड़ा सा नाम कीजिए, देखिए जितने दुर्गुण हैं सब जाने लग जाएंगे। ये उन्हें परम सुख आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसा यदि कुछ दिन करते रहे देखेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और साथ साथ में आत्मा का ज्ञान होकर के, परमात्मा का ज्ञान होकर के इस जगत में पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये नहीं होगा, माता के घर में फिर नहीं आना पड़ेगा। यह बात ध्रुव सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत की अपार महिमा है, इसके विचार इतने सुंदर हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसको सुने, अभ्यास करे अथवा न करे, उसी से ही वो पवित्र हो जाता है। और यदि अच्छी तरह से मन लगा करके सुने और उसको अपने काम में लाए तो निश्चित रूप में महान व्यक्ति हो जाएगा, और मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों को पाकर के नित्य काल के लिए वो सुखी हो जाएगा। अब हम भागवत की मूल कथा पर आते हैं, वो क्या कथा है। सबसे पहले हमारे सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य से सुत गोस्वामी, ये ऋषियों को ये कथा सुना रहे थे। उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया, जन्मादस्य जतः अन्वयादि तरतश्च अभिज्ञो सराट तेने ब्रह्मरिदा जाद कवे मोहयन्ति जत सूर्य तेजो बारिमदाम तथा विनमयो जत सर्गो अमृषा धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है परमम, जो परम सत्य है, मैं उनका ध्यान करता हूं, वो सब जगत का कल्याण विधान करे और हमारा भी कल्याण विधान करे। कौन? जन्मादस्य जतः, जो इच्छा मात्र से ही इस जगत का सृजन करते हैं, इच्छा मात्र से ही असंख्य कोटि लोगों का, ब्रह्मांडों का जो पालन करते हैं। कजे कैसे पालन करते हैं? पालन पोषण तो मेरी मैया और बाप करते हैं। तेरे मैया और बाप का पालन पोषण किसने किया? पेट में किसने पालन पोषण किया? पेट में तू कैसे गया? तू कैसा बड़ा हुआ? किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने नहीं ये सब किया। मैया खाती है रोटी चावल और वो दूध बन जाता है, उसके स्तन से जाता है, ये कौन किया? बच्चे की बुद्धि कहां से आई? कहां से आई बुद्धि? उसके अंग हृष्ट पुष्ट अच्छे हुए, वो अंधा नहीं हुआ, लंगड़ा लूला नहीं हुआ, कैसे? इसलिए भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। यहां तक कि कीट पतंग और ये जो पेड़ पौधे हैं सबका पालन पोषण वही करते हैं, सबका वही जन्म देने वाले हैं, और अंत में सबको सिमट लेते हैं, फिर नई सृष्टि होती है। तो कह रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये कौन है? ये कृष्ण है, जिसके विषय में बड़े बड़े देवता लोग मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा के हृदय में और सुखदेव के गोस्वामी के हृदय में जिन्होंने ऐसा अफरंत ज्ञान उन्होंने प्रकाश किया, जो भगवान को सब समय वो देखते हैं, अजर और अमर हैं, जिनकी माया ऐसी है, हम जानते हैं कि हम बुढ़ापा हमको आएगी, हम दुखी होंगे, हमारे बेटे हमको नहीं मानेंगे और हमको मरना होगा, तभी माया ऐसी है बलवान, जो वैराग्य होने नहीं देती और भगवान का भजन नहीं करने देती, ऐसी ये माया है। इसलिए जिनकी ये माया है मैं उसको प्रणाम करता हूं, उन ब्रह्म धर्माप्रज्ञित कई तो अर्थ परम होनी, ये दुस्साहस का श्लोक। जगत में तरह तरह के धर्म चल रहे हैं, जिसमें आत्मा का धर्म नहीं है, प्रभु का भजन का नहीं है विषय में, वो धर्म बेकार के हैं। धर्म के नाम पर लोग लड़ाई और झगड़ा करते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म में करने से ही धर्म को अपना हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमारा धर्म क्या है? हम मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख इत्यादि नहीं है। हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। गीता में भी ऐसा ही कहा गया, जितने जीव हैं सब हमारे अंश हैं, सभी हमारे दास हैं। इसलिए प्रभु के प्रति हमारा जो प्रेम है यही हमारा धर्म है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो सुख नहीं चाहता? एक चींटी तक भी सुख चाहती है। हम जो कुछ भी काम करते हैं इसलिए करते हैं कि दुख न रहे, सुख मिले। कर्मण्यारभमानानां दुःखत्तये सुखाय च। किस लिए कर्म करते हैं? एक चींटी रात भर सोती नहीं है, चलती रहती है। किस लिए? कहीं मीठा मिल जाएगा, कुछ खाने को मिल जाए, इसलिए। हम लोग किस लिए करते हैं काम? वाणिज्य, कोई व्यवसाय, कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई कुछ करता है, किस लिए? पैसे मिलेंगे। फिर पैसा क्या होगा? उसे सुख मिलेगा। मैं लोगों से पूछूं, यदि जे आप खाते किस लिए हैं, कमाते किस लिए हैं? तो खाने पीने के लिए। अच्छा, खाने पीने से क्या होगा? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, आप जीवित किस लिए रहना चाहते हैं? किस लिए? इसका उत्तर लोग नहीं देंगे। किस लिए जीवित रहना चाहते हैं? अरे हमने तो ऐसा प्रश्न ही नहीं सुना, अजीब प्रश्न। किस लिए हम जीवित रहना चाहते हैं? फिर खाने पीने के लिए, साइकिल ऑर्डर में घूमने के लिए? नहीं भाई, इसके लिए नहीं। जीवात्मा का स्वरूप ही है सुख। कृष्ण आनंदमय सच्चिदानंद कृष्ण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम एम ब्रह्म। कृष्ण आनंद स्वरूप है। जब तक उनसे हम नहीं मिलेंगे तब तक सुख और शांति नहीं होगा। इस चीज को गांठ बांध करके रख लो। ऐसा समझे कि उदाहरण के द्वारा, एक पत्थर लो, आसमान में फेंक दो, वो पत्थर कहां गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा। क्यों गिरेगा? पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, इसलिए खींच लेगा। आग जलाओ, आग की फ्लेम किधर जाएगा? आग की वो ऊपर जाएगी। क्यों? पृथ्वी कहने क्यों नहीं खींचती? गुब्बारा लेकर के हवा भर दो तो गुब्बारा किधर जाए? ऊपर जाएगा। पृथ्वी कहने खींचती? आग से जो धुआं निकलता है वो ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं आता? जिसका जो अंश है उसी के तरफ में मिलेगा। यहां पर एक बूंद भी पानी गिराओ फिर वो समुद्र में जाएगा, किसी न किसी वेपर बन करके जाएगा, नदी नालों से होकर के समुद्र में पहुंचेगा और भी वेपर बन करके फिर आकाश से फिर ऐसा घूमता रहेगा। वो जरूर पानी में मिलेगा, पानी एक बूंद भी नष्ट नहीं होगा। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं। जब तक भगवान से नहीं मिलेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी और शांति नहीं हो सकते। लाख उपाय करो, कोई भी चीज इस जगत की तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रेम हमारा धर्म है, भगवान के साथ में प्रेम करना ही हमारा धर्म है। और यही प्रेम सबसे प्रीति रखो। एक सिंह है, बाघ है, बनेला हाथी है, सबको मारेगा किंतु अपनी पत्नी को और बच्चों को मारेगा? सबका मांस खाएगा, रुधिर पान करेगा, रक्त। कौन अपने बेटे को बड़ा प्यार करेगा? बड़े बड़े डकैत लोग होते हैं, सबको मारेंगे, अपनी पत्नी को मारेंगे? वो सब कुछ मार करके उनका सब लेकर के अपनी पत्नी को देते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें सुख की लालसा नहीं है, प्रेम नहीं है। यह प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है। चूंकि यह सनातन धर्म कहलाता है आत्मा के वजह से, आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है। इन लोगों का भगवान के प्रति जो प्रेम है यही सनातन है। चूंकि हिंदू धर्म में सनातन धर्म का सद्भाव है इसलिए उसके बहुत निकट है। उसी में ऐसा देखा है, सच बोलो, माता पिता का आदर करो, भगवान को मानो। गीता और भागवत की पुस्तकें हैं, उसमें इसलिए थोड़ा सा निकट है, और नहीं तो जिस धर्म में ये प्रेम नहीं है, भगवान की बात नहीं है, वो धर्म धर्म नहीं। इसलिए हमारा असल धर्म है प्रेम। भागवत यही शिक्षा देती है, गीता भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हमारे शरणापन्न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, निगम कल्पतरुर गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भू भाग का। हे रसिक भाव लोग, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। क्यों? ये पृथ्वी की चीज नहीं है। जिस समय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये भागवत की कथा बतला रहे थे, आत्मज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ इसमें है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, कैसे उनको पाया जा सकता है, कैसे हम प्रेम को अपना डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, एक ही जीवन में हम सुखी कैसे हो सकते हैं, इसके तरीके बतलाए गए हैं, और जो जो इसका पालन किया वैसे ही हो गए। इसलिए वो कह रहे हैं निगम कल्प तोरो गलित अंग फलम, जिसमें वो आए और कथा होने आरंभ होती, इतने में देवता लोग आए और एक कलशे में अमृत भर करके ले आए। बोले जैसे आप इस कलश को परीक्षित महाराज जी को दे दीजिए और वो पी करके अमर हो जाएं, और भागवत हमको दे दीजिए, हम लोग ले जाएंगे, इसकी कथा सुनेंगे। हंसने लगे सुखदेव गोस्वामी, अरे मूर्ख, इंद्र तो अमर है, इसको पीता है अमृत को, किंतु उसको दुख क्यों, वो अहल्या के पीछे पीछे क्यों दौड़ता है? अहल्या की कथा आप लोग जानती होंगी, अहल्या के पीछे पीछे वो लग गया क्यों? वो असुरों के मारे हिरण्यकश्यपु के डर के मारे भागा और एक सरोवर के कमल के नाल में वो छिप गया, लाखों बरस तक रहा डर के मारे।